श्रीमद् भागवतम 10/20/21 डेट 16 मार्च 2015 स्पीकर चंड गोपी प्रभु
वृक्ष पद भी अपने पायों से आसन धारण कर लिया नाना विविध आत्ममूर्तय शारीरिक स्वरूप प्राक पहले क्षमा छिन्न तपोसा तपस्या से श्रांता थके हुए यथा जिस तरह काम अनुसेवना प्राप्त वंचित फलों के भोग करके अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो वृक्ष धुबले हो गई यो तथा सूख गए वो उनके अपने शरीर के विभिन्न अंग अपनी जड़ों अर्थात पायर से वर्षा का तथा जल पाकर टहलता उठे हैं। इसी तरह तपस्या के कारण जिसकर शरीर पतला और दुर्बल हो जाता है वो पुनः पुनः तपस्या से माध्यम से प्राप्त भौतिक वस्तुओं के भोग करके शास्त्र शरीर वाला दिखने लगता है। तात्पर्य पाद शब्द का अर्थ होता है पाय तथा पा का अर्थ होता है पीना। वृक्ष पादप कहलाते हैं क्योंकि वो अपनी जड़ों से जल पीते हैं जा उनके पेड़ों के तुल्य है। वर्षा का नवीन जल पीकर वृंदावन के वृक्ष में नई शस्तियाँ आई कलियाँ तथा फूल आने लगे और उनसे नवीन वृद्धि होने लगे। इसी तरह भौतिकतावादी व्यक्ति प्रायः अपनी अविकसित वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। उदाहरण अर्थ अमेरिका के राजनीतिक व्यक्ति अपने चुनाव के अभियान के समय देहाती के यात्रा करने समय कठोर तपस्या करते हैं। इसी तरह व्यापारी लोग भी अपने व्यापार के सफल बनाने के लिए निज सुख सुविधा के तिलांजलि दे देते हैं। ऐसे तपस्वी व्यक्ति तपस्या का फल प्राप्त करने पर पुनः स्वास्थ्य तथा संतुष्ट हो जाते हैं। जिस तरह वृक्ष शुष्क तथा तप्त ग्रीष्म के तपस्या सहन करने के बाद वर्षा का जल उत्सुकता से पीकर बढ़ने लगते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले क्षयं रूपा कदा मायं पदातीशा पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीजितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शकलजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं श्याद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता शिवीशखण्डितांश्च नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतिशे नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते ते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि पुलट सुंदरा दुति कदम्बा संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शचिनंदना। हरे कृष्णा। यह अध्याय का शीर्षक है वृंदावन में वर्षा तथा शरद ऋतुओं के बारे। इस तात्पर्य में विश्लेषण किए है कि आध्यात्मिकतावादी और भौतिकतावादी दृष्टिकोण का ऊपर, जैसा कि हर वस्तुओं का ऊपर अगर अपनी भौतिक दृष्टिकोण से कुछ विचार करें और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करें, इस दोनों विचार का अंतर होता है। भौतिक दृष्टिकोण में अगर कोई चीज़ को विचार करे तो अपना स्वार्थ को ऊपर आ जाते हैं कि अपना कितना फायदा होता है। इसलिए गोपाल जी के शिष्य लोग ने इसमें वर्णन किए तात्पर्य में कि जब अमेरिका में चुनाव होता है, से अमेरिका नहीं अगर भारत में भी जब चुनाव होता है तो नेता लोग ने कितना परिश्रम कर लेते हैं। इस परिश्रम को कहते हैं तपस्या, ऑस्टेरिटी जिसको बोलते हैं। ऑस्टेरिटी तथा तपस्या एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं और एक भौतिक दृष्टिकोण से भी विचार कर सकते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई विचार करे तो इसमें आध्यात्मिक प्रगति होता है तपस्या के द्वारा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वर गोस्वामी ने कितना तपस्या की थी। कारण क्या था ना, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए तपस्या की थी। अगर भौतिक दृष्टिकोण से इस तपस्या शब्द को विचार करे तो ज्यादा संग्राम किए मतलब इसका फायदा अपने को मिलता है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग ने तात्पर्य में वही लिखे कि चुनाव का समय जब नेता लोग बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, अपना घर अपना बंगलो सब छोड़कर कहाँ कहाँ जाके, कभी कभी कुटिया में जाके रहना पड़ता है, गांव गांव में जाते हैं चुनाव लड़ने का समय कि मेरे को वोट चाहिए, तो सब जगह में लिखा रहता है प्लीज़ कास्ट योर वोट इन योर फेवरेट कैंडिडेट। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसका ऊपर कि चुनाव का समय आज का दिन में जिस तरीके से चुनाव होता है कि आजकल हमारा कंट्री बहुत फास्ट हो गए, हर चीज़ आजकल कंप्यूटर में होता है, तो इतना प्रचार नहीं करना पड़ता है, सब टेलीविज़न में, लैपटॉप में, वाईफाई में, ये सब जगह में प्रचार होता है, इंटरनेट में प्रचार होता है। लेकिन आज से 20 साल पहले भी इसी तरीके से प्रचार नहीं होता था। तो इस तरीके से जब नेता लोग चुनाव लड़ने के लिए प्रचार करते हैं, उसका मन में विचार रहता है कि मैंने जो इतना तपस्या कर रहा हूँ, जो इतना ऑस्टेरिटी में दिखा रहा हूँ, इसका फल मेरे को मिले, इसको कहते हैं कि भौतिक दृष्टिवाद। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर कोई विचार करे कि तपस्या करने से फल क्या मिलता है, न तपस्या करने से हमारा आध्यात्मिक मार्ग में मैं उन्नति कर सकता हूँ, ये दोनों का दृष्टिकोण में फर्क रहता है। आध्यात्मिक कार्यकलाप में अपना आध्यात्मिक जीवन का उन्नति होता है और भौतिक कार्यकलाप में अपना भौतिक कार्यकलाप का उन्नति होता है। जिस तरीके से कोई आध्यात्मिक घटना को अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति को अगर अपने वर्णन की तो उसी प्रकार व्यक्ति इसको ये विश्वास नहीं करेंगे। बहुत पढ़ाई लिखाई किए हैं, बहुत शिक्षा प्राप्त किए, बहुत सारे डिग्री प्राप्त कर लिए, लेकिन उनको अगर भगवान तथा भगवान का भक्त का ऊपर कुछ चर्चा करे, कुछ लीला को बताए, तो उनको विश्वास नहीं होगा इसका ऊपर। बहुत सारे विद्वान ऐतिहासिक हैं जिन्होंने अपना ज्ञान के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ को रचना की थी। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति जो कि बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ाई लिखाई की है, एक से एक डिग्री प्राप्त की है यूनिवर्सिटी से, लेकिन जो ग्रंथ को रचना की है उसी ग्रंथ को पढ़ने से आत्मा कल्याण नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने में अपना जीवन में जो आध्यात्मिक कल्याण वो हो सकते हैं, जैसे कि वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत सारे ग्रंथ को रचना की थी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ को रचना की थी। इस ग्रंथ को पढ़ने में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होता है, लेकिन ऐतिहासिक जो है जिन्होंने ग्रंथ रचना किए है उसी प्रकार ग्रंथ को पढ़ने में आत्मकल्याण नहीं होता है। जैसे कि कोई ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति को अगर आपने जाकर बताए कि देखो इसी नवद्वीप धाम में एक समय कोटि करोड़ों करोड़ों दीप जलाते रहते थे, तो कोई ऐतिहासिक व्यक्ति सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, नवद्वीप धाम आज से 530 साल पहले प्रकटित हुए थे, श्रीमती राधा रानी ने प्रकटित की थी उसी समय, तो उसी समय कोटि कोटि व्यक्ति कहाँ से आ गए। लेकिन कोई आध्यात्मिक व्यक्ति के सामने जाकर अगर आपने ये शब्द को उच्चारण करें तो कहते कि चतुर्दिके कोटि कोटि महाद्वीप जले, तो कोई इतिहास भी जिन्होंने बहुत सारे इतिहास ग्रंथ माने हिस्टोरिकल ग्रंथ जिन्होंने रचना किए उनको पास जाकर अगर बताए तो सोचेंगे इसका तो कोई प्रूफ है नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स तो है ही नहीं, कोई पेपर भी नहीं है, तो इसको हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति सोचेंगे नहीं, ये भगवान का कार्यकलाप है, ये चिन्मय कार्यकलाप, इसके द्वारा ये हो सकते हैं। जैसे कि नित्यानंद प्रभु जब पनियाटी गए थे, राघव पंडित के घर में पहुंच गए, तो राघव पंडित बड़ा ध्यान पूर्वक विग्रहों का सेवा वगैरह कर रहे थे। तो पहले नित्यानंद प्रभु जब पहुंच गए, तब नित्यानंद प्रभु पहुंचने के बाद तो गौरांगो गौरांगो बोलकर उन्होंने हुंकार की, तो राघव पंडित ने आकर उनको धन्यवाद प्रणाम की, तो बड़ा धूमधाम से महासंकीर्तन उत्सव बनाए। तो महासंकीर्तन उत्सव बनाने के बाद राघव पंडित पूछने नित्यानंद प्रभु पूछने कि राघव मेरे को आप एक कदम वृक्ष का फूल लेकर आओ, मेरे को हार चाहिए ऐसा पुष्पहार जो कि कदम का होना चाहिए, कदम फूल का। तो राघव पंडित कहने लगे, प्रभु ये कदम फूल का सीजन है नहीं, ये बारिश का मौसम में कदम फूल होता है। तो वो कहने लगे, जाओ जाओ देखो गिया करो हो विचार। चेतन भागवत ग्रंथ में इसका वर्णन किया, जाओ जाओ देखो गिया करो हो विचार। तो राघव पंडित अपना बगीचा में गए, जाकर देखे कि जम्बीरो विख्यात सब कदम्बेर फूल। चैतन्य भागवत ग्रंथ में इसका वर्णन किए हैं वृंदावन दास ठाकुर कि जम्बीरो विख्य है कदम्बेर फूल। जम्बीर बोलकर एक फल होता है जिसको हिंदी में कहते हैं कि लींबू, बड़ा बड़ा लींबू होता है, जम्बीर उसको कहते हैं। तो राघव पंडित गए, जाकर देखा कि ये आश्चर्य बात है कि जम्बीर विख्य है कदम्बीर फूल, फुटिया आचाय अति परम अतुल। इतने सारे कदम फूल देख लिए कि सिर्फ नित्यानंद प्रभु के लिए नहीं, जितने सारे पार्षद बिंदु आए थे सबको पुष्पहार बना सकते। तो ऐसा एक घटना अगर कोई भौतिकवादी, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति को अगर बताए तो ऐतिहासिक व्यक्ति सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कदम फूल जो है ये बारिश का मौसम में होना चाहिए, बारिश का मौसम में एक कदम फूल होता है। लेकिन दूसरा समय ये कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद जी कहते कि ये है आध्यात्मिक दृष्टिकोण और भौतिक दृष्टिकोण में फर्क। व्यक्ति अपना पैर के ऊपर खड़ा रहते हैं तो इसमें वर्णन किया कि पाद अप मतलब पैर का ऊपर। वृक्ष कितना सहनशील होता है, इतना धूप में इतना धूप लगता है फिर भी सहन कर लेते हैं, कभी भी अपना मुख से प्रतिवाद का भाषा नहीं निकालते हैं, कभी गुस्सा नहीं दिखाते हैं। और वही वृक्ष जब बारिश गिरते हैं अपना मूल तथा शिखर जिसको बोलते हैं रूट, उसके द्वारा पानी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अगर पैर नहीं है तो खड़ा नहीं रह सकते हैं, चलने का क्षमता नहीं होता, जिसको कहते कि हैंडीकैप। तो आज का दिन में व्यक्ति, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं की है ही बिकम हैंडीकैप। तो अगर कोई सचल व्यक्ति जिसका भगवान ने दो दो पैर दे दिए, दो दो हाथ दे दिए, लेकिन कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसको अगर जाकर आपने बोल दिया कि आपने हैंडीकैप्ड, तो व्यक्ति आपको पर नाराज हो जाएंगे। लेकिन इस हैंडीकैप शब्द को प्रभुपाद जी व्याख्या करके इस हैंडीकैप्ड को आपने दो तरीका से इसका व्याख्या हो सकते हैं। आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, बहुत डिग्री आपने प्राप्त कर लिए हो, लेकिन अपना आत्मा का वाणी आपका कोई ज्ञान नहीं है। तो जितने सारे सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किए हो, एकदम स्टैंडर्ड वन से एमबीए तक जितने सारे आपने डिग्री को प्राप्त किए, ऑल डिग्रीज वैल्यूएशन लाइक एज जीरो। मतलब जितने सारे डिग्री आपने लिए लेकिन अगर आपका आध्यात्मिक नहीं है ज्ञान, तो पूरा डिग्री आपका सामने जीरो हो जाते हैं। इसी तरीका से प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे कि अगर आपने आध्यात्मिक कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किए तो आप हैंडीकैप का समान। हैंडीकैप किसको बोलते हैं? जिसको लुंगा बोलते हैं, जिसका पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, इसको बोलते हैं हैंडीकैप। तो आध्यात्मिक जीवन इसी तरीके से है, जिसका अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो हैंडीकैप्ट का समान है। भौतिक ज्ञान अपने बहुत प्राप्त कर सकते हैं। आज का दिन में तो ऐसा है कि प्रभुपाद जी एक जगह में लिखे भी है कि धोनी व्यक्ति अधिक से अधिक परिमाण डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीका से? आज का दिन में अगर आपको स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका नॉलेज का कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको पास धन है तो उसी धन देकर आपने एक से एक डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कि बैकडोर प्रोसेस नॉलेज। गिरिराज महाराज एक लेक्चर मैंने सुन रहा था, उसमें वर्णन किए कि बैकडोर नॉलेज कैसे होता है। अमेरिका में इसका बहुत चलते हैं। उन्होंने बताया बैक टू गॉडेड मैगजीन में कि अमेरिका में ऐसा है, ऐसा बहुत सारे पेपर में ऐड देते हैं कि आपको ए डिग्री करना है, ओ डिग्री करना है, तो प्लीज़ कम एंड कंटेक्ट, आओ आके संबंध बनाओ। तो आपको पास बहुत सारे धन हैं, आपने उसी धन को कोई एक अच्छे स्कूल में, अच्छा यूनिवर्सिटी में डाल दिए, अच्छा कॉलेज में डाल दिए, तो आपको कॉलेज में जाने का कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ पैसा के द्वारा अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो गिरिराज महाराज जिस मैगजीन में बताए कि एक डिग्री होता है जिसका नाम है एमफिल, तो अमेरिका में ऐसा बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी है जिसमें पैसा के द्वारा, अगर आपके पास धन है तो आपने उसी धन के द्वारा वो डिग्री को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बाद में महाराज लिखे व्हाट इज द यूज अबाउट दिस डिग्रीज इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज, हाउ कैन यू गेट द रियल नॉलेज। तो कहते हैं कि आपने ये जो डिग्री आपने प्राप्त की, जो सर्टिफिकेट लेकर आए, ही जस्ट लाइक ए पेपर, एक पेपर का समान है। क्यों ना, जिसके द्वारा आपने आपका जीवन का असली ज्ञान को आपने प्राप्त कर नहीं पाए। जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये गौड़ीय सिद्धांत माला जो है, गौड़ीय सिद्धांत किसको कहते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर दशमूल शिक्षा ग्रंथ में वर्णन किए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द गौड़ीय सिद्धांत। गौड़ीय सिद्धांत किसको कहते हैं? गौड़ीय सिद्धांत का अर्थ होता है कि माधवाचार्य धारा में एक गुरु परंपरा धारा किस तरीके से हम लोग को प्राप्त करना है उसका ऊपर ये वर्णन किए। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक आज्ञा प्रदान की थी गौड़ीय वैष्णव समाज के सामने। कौन सा आज्ञा उन्होंने प्रदान की थी? कि उनका आज्ञा यही थी कि श्रील माधवाचार्य गुरु परंपरा धारा से जो नौ प्रकार का तत्व का विश्लेषण किए हैं, उसी तत्व को अपना शिर में धारण करके रखना। और जिन्होंने ये माधवाचार्य धारा में गुरु परंपरा तत्व को अपना मस्तक में रख दिए, तो उनका ही भक्ति जीवन में प्रगति होता है। तो कौन सा नए तत्व का बारे वर्णन किए है? समाधवाचार्य नौ प्रकार का तत्व का वर्णन किए है वैष्णव सिद्धांत माला ग्रंथ में। भक्ति विनोद ठाकुर ये दशमूल शिक्षा ग्रंथ में, जो कि कमलोचन प्रभु का मन में बहुत इच्छा है कि भक्त लोग ने दशमूल शिक्षा को अध्ययन करे अच्छे से, तो श्रीमद् भागवत का ऊपर दशमूल शिक्षा है, भगवत गीता का ऊपर दशमूल शिक्षा का है, चैतन्य चैतन्यमित का ऊपर दशमूल शिक्षा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये दशमूल शिक्षा जो ग्रंथ रचना की थी इसमें श्रीमद् भागवत का ऊपर जो दशमूल शिक्षा क्या है उसको वर्णन किए हैं, भगवत गीता का ऊपर है। तो कमलेश्वर प्रभु प्रयास कर रहे हैं हम सबको ये दशमूल शिक्षा का ऊपर ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो माधवाचार्य जो नौ प्रकार का तत्व का विश्लेषण किए है गुरु परंपरा धारा, जिसमें पहला तत्व का नाम लिखे है भगवान ही एकमात्र परम तत्व। इसके पुराण में एक श्लोक भी है इसका ऊपर, से श्लोक से भक्त विनोद ठाकुर इसको विश्लेषण कर रहे हैं। भगवान ही एकमात्र परम तत्व। दूसरा तत्व विश्लेषण किए है भगवान अखिल वेद वाक्य। तीसरा तत्व विश्लेषण किए है कि भगवान विश्व सत्य। चौथा तत्व विश्लेषण किए है भेद सत्य भगवान। और पांचवा है भगवान जीव के साथ संबंध है श्री हरिदास रूप से। इसका बहुत ही सुंदर से भक्त विनोद ठाकुर इस दशमूल शिक्षा ग्रंथ में विस्तारित रूप से इसका वर्णन भी किया है। भक्ति विकास महाराज ये दशमूल शिक्षा को अभी हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। तो भगवान एकमात्र परम तत्व, इसके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का शक्ति किस तरीके से है, भगवान को कैसे हम लोग विचार, भगवान को कैसे हम लोग संबंध बना सकते हैं भगवान के साथ, और भगवान कौन सा शक्ति का अधीन है, इसी तरीके से विस्तृत रूप से इसका वर्णन किए हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये दशमूल शिक्षा जो श्रीमद्भागवत गीता चैतन्य चैतन्य सबका ऊपर ये दशमूल शिक्षा भक्ति विनोद ठाकुर ने रचना की थी। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में अगर किसी को प्रगति करना है तो ये दशमूल शिक्षा जरूरी होता है। आज ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ में एक तीन प्रकार का शिक्षा दे रहे हैं, जैसा कि भक्ति शास्त्री होता है पहले, उसके बाद भक्ति वैभव, तीसरा है भक्ति वेदांत। तीन कोर्स होता है। तो भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव में ये दशमूल शिक्षकों पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि ये दशमूल शिक्षा श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमद् भागवत का मूल आधारित ये दशमूल शिक्षा कहते थे। दशमूल शिक्षा के द्वारा अपना आध्यात्मिक जीवन का प्रगति कोई कर सकता है, और नहीं तो अगर ये दशमूल शिक्षा का तत्व के बारे जानकारी नहीं होगा तो लगता है कि ये सब जो घटना जो भगवान का जो लीला है, भगवान का भक्त का भी जो लीला है, ये लगता है कोई इतिहास है इसका। श्रील प्रभुपाद ये इतिहास और अलौकिक ये दोनों शब्द को उन्होंने विश्लेषण किए थे। ये अलौकिक शब्द आता है हृदय से। ये अलौकिक शब्द जो है आध्यात्मिक शब्द है, चिन्मय शब्द है, और एक इतिहास होता है जिसका कभी कभी कोई प्रमाण नहीं रहता है, जिसको कहते कि इतिहास। बहुत बड़े बड़े जो इतिहास लिखने वाले जिसको कहते कि ऐतिहासिक, कोई जगह का पिछले का बैकग्राउंड, तो ऐतिहासिक बिंदु अपना भाषा के द्वारा इसको लिख देते हैं, और वो पढ़ने में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई आत्मकल्याण नहीं होता है। लेकिन भगवान तथा भक्तों का अलौकिक कार्यकलाप, चिन्मय कार्यकलाप पढ़ने में, श्रवण करने में अपना जीवन को सुधार सकते हैं। किसके द्वारा? जैसे कि विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा शब्द जानियो निश्चय, तो श्रद्धा होना चाहिए भगवान का ऊपर। और भगवान का ये अलौकिक कार्यकलाप और भगवान का भक्त का अलौकिक कार्यकलाप, ये सब चिन्मय, जिस श्रवण करने में हमारा जीवन भी सुधार सकते हैं। तो आज के इस श्लोक में यही वर्णन की है कि जागतिक तथा आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से अगर कोई भी एक शब्द को अगर अपने पकड़ के चले, इसका दो फायदा होता है, एक आध्यात्मिक फायदा है और एक भौतिक फायदा है। जागतिक व्यक्ति हर समय देखते हैं कि भौतिक लाभ किस तरीके से मैं प्राप्त कर सकता हूँ, और आध्यात्मिक व्यक्ति सोचते हैं कि इस शब्द को ग्रहण करने के नाते मेरे को आध्यात्मिक प्रगति कैसे होता है। आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा आध्यात्मिक जीवन को कोई सुधार सकते हैं, और भौतिक दृष्टिकोण से द्वारा अगर कोई विचार करे तो उसको भौतिक लाभ मिलते हैं। तो प्रभुपाद जी डिफरेंस किए कि आध्यात्मिक लाभ और भौतिक लाभ में फर्क क्या है। तो प्रभुपाद जी लिखे कि आध्यात्मिक लाभ बिकम ए कंक्रीट और भौतिक लाभ बिकम ए फ्लेक्सिबल। मतलब आध्यात्मिक जो लाभ होता है वो एकदम कंक्रीट का माफिक रहते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, जो कभी अपना जीवन से गिरने का कोई संभावना है, और भौतिक लाभ बिकम ए फ्लेक्सिबल, मतलब ये कभी भी अपना जीवन से निकल भी सकते हैं। तो जिसका भगवान का ऊपर श्रद्धा रहते हैं, कहते कि श्रद्धा शब्द जानियो निश्चय, तो जिसका श्रद्धा है वो सोच सकता कि हाँ नित्यानंद प्रभु बताए कि जाओ अभी जाके कदम फूल लेकर आओ, तो राघव पंडित गए जाकर देखा है सही कदम फूल है, इसको बोलते हैं कि आध्यात्मिक। अगर कोई ऐतिहासिक को बताए बोलते ये हो ही नहीं सकता है कि बारिश का मौसम है ही नहीं, अभी कैसे कदम फूल लेकर आएंगे। कहे कि नवद्वीप धाम में नवद्वीप वासी हजारों हजारों दीप लेकर चांदका जी के घर में पहुंच गए थे, उसी समय इतने सारे व्यक्ति था क्या? कोई ऐतिहासिक को जाकर अगर पूछे उसका मन में पहला इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा, प्रश्न चिन्ह, कि इतने व्यक्ति कहाँ से आ गए उसी समय नवद्वीप धाम में। लेकिन शास्त्र तो कभी झूठ नहीं हो सकता है, गौड़ी आचार्य सब लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास को, विराज गोस्वामी, सब वर्णन किए इसमें शास्त्र में। तो शास्त्र कभी झूठ नहीं होता है। नवद्वीपेर मध्य कोटि कोटि महाद्वीप जले, इस प्रसंग में जब तक महाराज एक बार बता रहे थे कि उन्होंने एक जगह में गया प्रचार करने के लिए, तो महाराज ने अजामिल का कहानी बता रहे थे, तो जब अजामिल का कहानी बताए तो एक व्यक्ति महाराज को आके पूछे कि महाराज आपने अजामिल का कहानी बताए, तो अजामिल ने अपना छोटे पुत्र का नाम रख दिया था कि नारायण, तब नारायण नारायण बोलते बोलते जब अजामिल देवता की तो विष्णु दूध आकर उसको लेकर गए, तो मैं भी हर दिन एक बंडिल कल के मैंने बीड़ी पीता हूँ। तो महाराज एकदम आश्चर्यित हो गए, जब जब महाराज सुस्त थे, मतलब शारीरिक रूप से अच्छे थे, उसी समय महाराज बताए कि वो वृद्ध व्यक्ति आकर मेरे को पूछने लगे कि महाराज आपने अजामिल का कहानी बताए, आज नारायण नारायण उन्होंने बोले, तो मैं भी हर दिन एक बंडल करके बीड़ी पीता हूँ, और उस बीड़ी का ब्रांड नेम था श्री कृष्ण बीड़ी। तो बोलता है मैं तो हर दिन एक बंडल बीड़ी, मतलब एक बंडल में 25 करके बीड़ी रहते हैं, तो मैं 25 बीड़ी पीता हूँ, और पीने का समय में हर समय बोलता हूँ कि श्री कृष्ण बीड़ी मैं पी रहा हूँ। तो उन्होंने नारायण बोलकर एक बार नारायण बोले इसके लिए विष्णु दूत आकर उनको लेकर गए, तो मैंने जब 25 बार श्री कृष्ण बीड़ी उच्चारण कर रहा हूं तो मैं भी तो कृष्ण का धाम में पहुंच सकता हूं। तो महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे आज से करीब 6-7 साल पहले, इसका बहुत सुंदर लेक्चर भी आया भगवत दर्शन में। महाराज उस समय एकदम क्रोधित हो गए थे, जारे औजा मिलने शुरू से भुक्ति की थी, थोड़ा समय के लिए भुक्ति से विच्युत हो गए थे बोल के उनका ये सब पतित हो गए। उन्होंने बचपन में अपना पिताजी का निर्देश में भगवान का सेवा पूजा के लिए वो वन में जाते थे पुष्प वगैरह चयन करने के लिए, और उसी पुष्प चयन करने का समय उन्होंने ऐसा कोई शुद्ध और सुदर्शनी को देखा था। पहली बार देखे तो उनका मन में कुछ फर्क नहीं आया, जब दूसरी बार उन्होंने देखा तब उनका मन में थोड़ा भी कुछ चिंतन आए, तीसरी बार भी जब देखा तब वो भटक गए थे। तो आपने श्री कृष्ण बीड़िया पी रहे हो मतलब ये नहीं कि आप भगवान का नाम बोल रहे हो, आपने बीड़ी आपका माध्यम माने बीड़ी आपका उपलक्ष्य है। तो महाराज बहुत सुंदर इसका वर्णन भी किए थे, तो करीब 4-5 इशू का पहले एक भगवत दर्शन इशू में जब तक महाराज के लेक्चर लिखा था बैक टू गार्डन मैगजीन में। तो इसी तरीके से महाराज बताए कि हमारा चेतना सही होना चाहिए। अगर आपको हर चीज निर्भर होता है आप किस तरीके से आपका कंसियसनेस किस तरीके से है, आपने बहुत पढ़ाई की हो, बहुत सारे डिग्री आपने प्राप्त की हो, लेकिन यू आर एसोसिएटेड विद द एंटी सोशल, तो वंस दे विल कम देन यू बिकम एंटी सोशल। महाराज बताया कि आपने बहुत पढ़ाई की हो, बहुत सारे डिग्री प्राप्त किए हो, लेकिन आपका संग रहता है समाज विरोधी के साथ, तो एक दिन आ जाएगा कि आपने जितने सारे डिग्री को प्राप्त किए डिग्री को सब फेंक कर आपने समाज विरोधी बन जाओगे। आपने अगर जिंदगी में कभी ड्रग नहीं लिए हो लेकिन आपको जो ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति रहता है जो कि नेशावान करते हैं उसको साथ अगर आपको संग रहे तो एक दिन आप जितने भी अच्छे व्यक्ति हो एंड यू बिकम ए ड्रग एडिक्टेड, तो आपको भी ड्रग एडिक्टेड होना पड़ेगा। तो मतलब आपने कभी ड्रग नहीं ली है तो जैसा लिखा रहता है ना कि जो कोई दवाई आप खरीद करते हो तो उसमें लिखा रहता है डायरेक्शन बाय द फिजिशियंस, तो आपने सोच लिए कि अरे ये तो दवाई तो मैंने खरीद करके लेके आया तो मैंने अपना हिसाब से मैं पी सकता हूं तो जल्दी से जल्दी मेरा उद्धार हो जाए, तो इसी विचार से अगर कोई दवाई ले तो दवाई का कुछ काम नहीं लगेगा उसमें, लेकिन उसमें लिखा रहता है डायरेक्शन बाय द फिजिशियंस, माने डॉक्टर का हिसाब से आपको पीना चाहिए। आपने एक टैबलेट खरीद करके लेके आया या एक प्लेट पूरा तो उसमें एक साथ कम से कम 20 टैबलेट है, आपने सोचा कि 20 टैबलेट मैंने एक साथ पी लूँगा, जैसे कि स्लीपिंग पिल होता है तो स्लीपिंग पिल आपने लेकर आया, कभी कभी कोई डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर देते कि अकॉर्डिंग टू द पेशेंट किसी को एक एक करके पिल खाना है, तो आपने एक साथ 10 पिल लेकर आया स्लीपिंग पिल, तो आपने सोचा कि चलो मैंने एक साथ 10 पिल लेकर आया तो चलो 10 स्लीपिंग पिल मैंने एक साथ खा लूँगा तो आपका कल्याण हो गया पूरा। तो हर चीज़ में कुछ डायरेक्टर होता है, कुछ कोच जिसको बोलता है टीचर, तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसा एक टीचर है जो वर्ल्ड को पूरा उन्होंने शिक्षा दी, तो हाउ टू बिकम इन द रियल पीस ऑफ आवर लाइफ, कैसे हम लोग अपना जीवन में शाही सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी वही शिक्षा दी कि सिर्फ आपने अगर शास्त्रीय ग्रंथ के ऊपर अपना जीवन को आधारित रखे तो जीवन में आप शाही सुख को प्राप्त कर सकते हैं। वो है शास्त्रीय आधार जिसको बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता भगवतम आर चैतन्य चैतन्य ग्रंथ। इसके लिए कभी कभी भौतिक व्यक्ति सोचते हैं कि हरे कृष्ण वाला मतलब मोस्ट ऑफ द हरे कृष्ण वाला दे आर इलिटरेट, मतलब अशिक्षित व्यक्ति। नहीं, श्री प्रभुपाद जी एक जगह में एक इंटरव्यू किए थे, उसमें कोई पत्रकार ने पूछा ये स्वामी जी मोस्ट ऑफ योर फॉलोअर्स मोस्ट ऑफ योर डिवोटीज दे आर इलिटरेट दे डजंट नो एनीथिंग एल्स ओनली एक्सेप्ट हरे कृष्ण महामंत्र। तो प्रभुपाद जी बताया नहीं, देयर मिनिमम क्वालिफिकेशन इज BSc। तो सांबादिक ने आश्चर्यित हो गए, संगवादी बोला अरे ऐसा तो बहुत छोटे छोटे लड़का को मैं देख रहा हूँ कम से कम BSc डिग्री को प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट ही शुड बी 18 ईयर्स, उनका 18 साल 19 साल उम्र होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मैंने ऐसा शिक्षा दिया हूँ कि ये सब BSc डिग्री प्राप्त कर लिए। तो संगवादी ही सरप्राइज, तो बताया कि कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दैट। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि दे आर ऑल BSc मीन्स B means Bhagavad Gita, S means Srimad Bhagavatam, C means Chaitanya Charitamrita. All Hare Krishna people, all Hare Krishna devotees, they should know 3 Shastras. And that's why I am telling them, they are all the BSc category. So, koi Hare Krishna bhakt jo hota hai, koi murkh vyakti nahi hota hai. So, Babaji bahut sundar se isko explain kiye the. Ye interview liye the unka Los Angeles mein. तो प्रभुपाद जी इसी तरीके से इस भावना को सामने रखकर यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में तो संघ तैयार किया था, जिसके लिए प्रभुपाद ने इतना सफल बने। अपना उद्देश्य के लिए नहीं की थी कुछ भी, जो मेरा नाम हो जाए, मैंने इतना कुछ किया हूँ, मैंने इतना जल्दी से जल्दी इतना सारे मंदिर बने, नो नथिंग दैट। प्रभुपाद जी बताया कि I don't have to take anything from you. I want to give you something. मैंने कुछ लेने के लिए नहीं आया आपके पास, मैंने कुछ देने के लिए आया। And which is that? That is called the BSc degree. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Gantara Simad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande.